ಸದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋರ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋರ ಯಮುನಾ ತೀರ
ರಾಮ
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Radha, Hare Hare Radha, Hare Hare Radha.
शांतरयो वात्यारूपधरोहरं कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरि भारभूत तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूपधरोहरं कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरि भारभूत तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूपधरोहरं कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरि भारभूत तृणावर्तः तृणावर्त असुर शांतरयः झोंके का वेग घट गया है। वात्यारूपधरः जिसने प्रबल बवंडर का रूप धारण किया था। हरन तथा ले गया था। कृष्णम कृष्ण को नभगतः आकाश में ऊंचे चला गया। गंतुम आगे जाने के लिए न शक्नोत समर्थ न था। भूरि भार भूत क्योंकि कृष्ण असुर से भी अधिक शक्तिशाली तथा भारी थे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति अद्वान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तृणावर्त असुर वेगवान बवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गए, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण तथा तृणावर्त की योग शक्ति में प्रयोगिता दिखाई गई है। योगाभ्यास द्वारा असुरगण सामान्यतया 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये है अणिमा लधिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व तथा काम वसायिता। यद्यपि असुर कुछ हद तक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे कृष्ण की योग शक्ति से होड़ नहीं ले सकते, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरो हरि, कृष्ण से कोई होड़ नहीं ले सकता निसंदेह। कभी कभी कृष्ण की योग शक्ति का एक अंश पाकर ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समक्ष करते हैं और अपने को ईश्वर बतलाते हैं। वे यह नहीं जानते कि ईश्वर परम योगेश्वर हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि तृणावर्त महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में उड़ा ले गया, किंतु कृष्ण भी महिमा सिद्धि योगी बन गए। जब माता यशोदा उन्हें लिए थी तो वे इतने भारी हो गए कि माता जिन्हें कृष्ण को गोद में उठाने का अभ्यास था यह भार सहन नहीं कर पाए, जिससे उन्हें नीचे जमीन पर रखना पड़ा। इस तरह तृणावर्त माता यशोदा की उपस्थिति में कृष्ण को ले जा सका, किंतु जब कृष्ण ने आकाश में ऊंचाई पर महिमा सिद्धि धारण की तो वह असुर आगे न जा सका, अतः उसे अपनी शक्ति रोकनी पड़ी और कृष्ण की इच्छा के अनुसार नीचे आना पड़ा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण की योग शक्ति की बराबरी न करे। भक्तों में सारी योग शक्ति स्वतः रहती है, किंतु वे कृष्ण से बराबरी नहीं करना चाहते, बल्कि वे कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनकी योग शक्तियाँ कृष्ण की कृपा से प्रदर्शित होती हैं। भक्तगण इतनी प्रबल योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी कोई असुर कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु वे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहते। वे जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, फलतः वे असुरों से श्रेष्ठतर पद पर होते हैं। ऐसे अनेक कर्मी योगी तथा ज्ञानी होते हैं जो बनावटी तौर पर कृष्ण की बराबरी करना चाहते हैं। अतः ऐसे सामान्य मूर्ख लोग जो विद्वानों से श्रीमद् भागवत सुनने की परवाह नहीं करते, किसी धूर्त योगी को भगवान मानने लगते हैं। संप्रति ऐसे अनेक कथा कथित बाबा है जो कोई तुच्छ योग शक्ति दिखाकर अपने को ईश्वर का अवतार बतलाते हैं और मूर्ख लोग कृष्ण विषय ज्ञान के अभाव में इन बाबाओं को ईश्वर मानते हैं। श्री प्रभुपाद की तुम ज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवमं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जयतां सुरतो पंगु मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदां भोजो शिरामदन। परम सौभाग्य है श्री राधा बिहारी के प्रांगण में बैठ करके हम कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज भागवत सुनते सुनते सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान की हमें और बाल लीलाएं सुनाएं। जब पूतना वध की लीला सुनाई उसके बाद उत्कंठा और बढ़ गई परीक्षित महाराज की। और यही है भागवत का फल कि भागवत सुनते सुनते हमारी उत्कंठा भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बढ़ जाती है। और ये बढ़ना यही मनुष्य जीवन का फल है। जीने का फल यही है कि भागवत में रति उत्पन्न हो जाए। नौ उत्पाद यदि रतिम श्रम ये रही केवल यदि इस जीवन हम जी रहे हैं और भगवान की कथा में यदि रति प्रेम नहीं है, इसमें आसक्ति नहीं हो जाती है, तो ये जीवन व्यर्थ है। श्रम ये वही केवल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्रम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं सब, और ये करते करते भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला कथाओं में हमारी रुचि होती है। परीक्षित महाराज की इतनी रुचि है कथा में कि अनशन आमरण व्रत धारण किया है, अब उनको कोई भूख प्यास नहीं लग रही है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप राजा हो और पहले से आदत है भोगों की, तो बहुत दिन बीत गए हैं, कृष्ण जन्म की कथा के पहले प्रसंग है, तो आप थोड़ा खा लो, थोड़ा पानी जल पी लो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अब मुझे ये भूख और प्यास पीड़ा नहीं दे रही है, क्योंकि पिबंतम तव मुखामृतम च्युतम हरिकथामृतम। यद्यपि मुझे श्राप मिला है प्यास के कारण और प्यास और भूख लग रही है, परंतु आपके मुख से जो अमृतमय जल रही है कथा, वो कथा का पान करने के कारण ये भूख और प्यास बाधा नहीं दे रही। तो ये है कथा। जब कथा में रुचि हो जाती है तो संसार की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी दुख या सुख बाधा नहीं होती। आज दुख इसलिए बाधा दे रहे हैं क्योंकि हमारी कथा में इतनी रुचि नहीं है। जब कथा में रुचि आती है, भगवान की सेवा करने से, भगवान के भक्तों की सेवा करते रहने से, धीरे धीरे इस भगवान की बाल लीला या कथा में रुचि प्रकट होती है। तो हम भगवान की बाल मधुर बाल लीलाओं को सुन रहे हैं, जो परीक्षित महाराज की कंठा के साथ सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल प्रेम से सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते आज का जो श्लोक है, त्रिणावर्त की लीला चल रही है। त्रिणावर्त असुर को मारने की लीला, भगवान की अनेक प्रकार की लीला है, इसमें एक प्रकार है असुर मारण लीला। भगवान ने कई असुरों का वध किया, परंतु उसमें ही वो लीला करते करते मान गए। ऐसा नहीं कि स्पेशल उनको हाथ में अस्त्र शस्त्र को धारण करके असुरों को मारना था, खेल खेल में ही खलास कर देते हैं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी पुतना को मारा, शक्तासुर को मारा, ये लीला सुना रहे हैं। और क्रम से ये जो लीला है त्रिणावर्त की लीला, वो बाद में है, 26वें अध्याय में, इसी स्कंद के 26वें अध्याय के 6वें श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में ये लीला दी गई है। तो ये जो लीला है, अभी भगवान कृष्ण जब करवट बदले और शक्तासुर को मारा, तो ये 3 मास के हुए हैं ठाकुर जी और ये लीला की। और उसके बाद नामकरण इत्यादि जो लीलाएं हैं, और भगवान चलते हैं पैर पर, घुटने पर चलते हैं और अनेक क्रीड़ाएं करते हैं, ये सब लीलाएं क्रम से। परंतु सुखदेव गोस्वामी ये जो लीला है त्रिणावर्त, ये 1 साल के जब ठाकुर जी हुए तब की हुई है, परंतु ये पहले सुना रहे हैं। क्रम की रक्षा नहीं कर पाए, क्यों, क्या कारण था? तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान की ससुर मारण लीलाओं को कहते हुए उसमें इतने रम गए, उसमें इतने आविष्ट हो गए कि फिर एक असुर को मारने की लीला करें। तो ये है भगवान की कथा। श्रोता और वक्ता दोनों ही इस भगवान की लीलाओं में रम जाते हैं, खुश जाते हैं। दीक्षित महाराज ने भी प्रारंभ में कहा ना, निवृत तरशेर उपगीय मानांग, आपकी कथा जो है जो निवृत तरशे संसार की तृष्णाओं से निवृत हो चुके हैं उनके लिए भी वो इसी में रमण करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी संसार की सारी तृष्णाओं से वो मुक्त हो त्याग चुके हैं, परंतु कृष्ण कथा में इतने रम गए कि वो सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को कह रहे हैं, और कहते कहते असुर मारने की लीला, कहते कहते और एक असुर को मारने की लीला कहते। तो यहां चल रहा है प्रसंग के त्रिनावल। तो एक दिन की बात है जब माँ यशोदा कृष्ण को अपने गोदी में लेकर अपने आंगने में बैठी थी, तो वैसे तो रोज क्रीडन भगवान अलग अलग प्रकार की क्रीडाएं नंद भवन में किया करते हैं, और ये सौभाग्य जो है उनकी लीलाओं को देखने का ये यशोदा को मिला है। धन्य है यशोदा जिसको ऐसा सुख प्राप्त हुआ जो लक्ष्मी जी को शिव जी को ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। तो एक दिन अपने गोदी में बिठा करके माँ यशोदा दूध पिला रही थी गोदी में लेकर के, और बस कन्हैया ने दूध पी ही लिया था, और उनके मधुर मुस्कान वाले मुखमंडल को निहार रही थी, और निहारते निहारते और जब ये दृश्य था तो वर्णन है कि उस अंगने में कुछ गोए जो गाय जो खड़ी थी वो तो गाय भी इस कृष्ण के मुंह को देख रही थी, और घास जो खा रही थी वो बंद करके मंत्र मुक्त होकर के बिल्कुल चित्रवत होकर के इस कन्हैया के मुखमंडल को देख रही थी, और माँ बेटे का जो वात्सल्य भाव है उनको देख रही थी, और आकाश से कुछ पक्षी भी वहां कलरव कर रहे थे, और गाय के जो बछड़े थे वो बछड़े भी माता का दूध छोड़ करके कृष्ण की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है और इतना मधुर है कि कोई देख लेता है तो फिर संसार उनके लिए दृश्य हो जाता है, फिर कभी वो इस खंड जगत को अखंड को देख लेता है तो ये खंड जगत को फिर देखना नहीं चाहता। तो ठाकुर जी के ऐसे सुंदर मुखमंडल जिनका वर्णन बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, उसमें तरह तरह से अनेक अनेक प्रकार से भगवान के रूप का भी वर्णन किया है। तो उस नंद आंगन में गाय बछड़े पक्षी इत्यादि और साथ ही साथ दूसरी गोपियां भी वहां आकर के कृष्ण की मधुर लीलाओं को देख रही हैं। तो यशोदा जी के लिए तो ये रोज का क्रम था, रोज विविध लीलाएं होती रहती थी, और जब गोपियां आती थी तो आपस में चर्चा होती थी, यशोदा सुनाती थी, क्योंकि अभी छोटे कृष्ण हैं तो बाहर नहीं जाते थे, परंतु घर में ही अनेक अनेक प्रकार की लीला होती थी, और आपस में गोपियां बैठ करके सर्वे मिलित्वा समवाप योग्यम नामानि कृष्णानि मनोहराणि, भगवान के मधुर मधुर गुण रूप नाम लीलाओं को बैठ करके आपस में चर्चा करती थी, और यही है जीवन, ये इसी से धन्य होता है, आपस में मिलकर हरि चर्चा हरि कथा करने। तो इस प्रकार से लीला चल रही थी, ठाकुर जी ये दूध पी लिया था, और दूध पीने के बाद तुरंत उन्होंने देखा क्योंकि गोदी में थे तो आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे थे, तो कृष्ण ने मैया को कहा, कन्हैया ने, कि मैया अभी क्योंकि अब एक साल के हो गए थे तो थोड़ा बोल लेते थे, परंतु तोतली भाषा में बोलते थे, है ना। बच्चा जब थोड़ा से बड़ा होता है, सीखता है बोलना, तो तोतली भाषा में बोलता है। तो कन्हैया भी अब लीला कर रहे हैं, तो सब लीला और सब लीलाओं का आनंद माता को देना चाहते हैं, तो तोतली भाषा में बोल रहे हैं और माँ इनको सुनकर मुग्ध हो जाती है। एक तो उनकी वाणी इतनी मधुर है और उसमें भी थोड़ा तोतलापन है, तो और मधुर लग रहा है। और तोतली भाषा में वो बता रहे हैं, एक उंगली पक्षी की, पक्षियों की ओर निर्देश करके कह रहे हैं कि मैया ये कैसे उग सकते हैं आकाश। तो यशोदा ने कहा ये तो पक्षी है, भगवान ने उनको पांख दी है तो उड़ सकते हैं। बोले मैं भी उड़ना चाहता हूं। मैया ने कहा ये तो भारी बात होगी, अरे बेटा मनुष्य नहीं उड़ सकता है, पक्षी उड़ सकते हैं। बोले मैं क्यों नहीं उड़ सकता, मुझे उड़ना। इन यशोदा नंदन ने जिद पकड़ ली, और जब वो कुछ हट पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। तो जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे उड़ना है, तुम मुझे अपने हाथों से उछाल कर उड़ाओ। तो माता ने, बेटा जिद पकड़ लेता है तो उसको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता। तो कृष्ण को हाथ में लेकर ऐसे उछालने लगी, दो तीन बार उछाल के फिर हाथ में आ जाते थे, फिर हाथ में आ जाते थे। तो माता थक गई, और थक गई तो फिर से उन्होंने अपनी गोदी में बिठा दिया, और गोदी में बिठा दिया। और कृष्ण की इच्छा थी कि मैं आकाश में उड़ू, और उसी समय बिल्कुल गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब सत्तासुर मर गया तो कंस ने तुरंत इस त्रिणावर्त को भेजा था मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। तो त्रिणावर्त आ चुका था, और भगवान ने तो अंतर्यामी उन्होंने देख लिया कि त्रिणावर्त आ चुका है। तो तुरंत ठाकुर जी ने अपने वजन को बढ़ाया, माँ यशोदा की गोदी में बैठे थे परंतु अपने वजन को इतना बढ़ाया कि माता ने आश्चर्य हुआ, कि ये क्या है, मेरा कन्हैया इतना भारी कैसे हो गया पहाड़ की तरह। और तुरंत उन्होंने अपनी गोदी में से लेकर नीचे रख दिया, और नीचे रख दिया तो उसी समय ये जो त्रिणावर्त है बवंडर के रूप में आया। बवंडर देखा है सिटी में तो बवंडर बहुत कम होते हैं, लेकिन गांव में जब आप जाते हैं, बहुत बड़ा खेत होता है या जमीन होती है, तो वहां पर ये बवंडर आते हैं। तो बवंडर का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि दूसरे जो असुर है वो अलग अलग रूप बदल करके, वेश बदल करके आए हैं, परंतु मैं कोई वेश धारण नहीं करूंगा, अदृश्य भी नहीं, बवंडर के रूप में आए। और इतनी आंधी, इतने तूफान में आया। वास्तव में ये बवंडर के रूप में आया, और इतनी आंधी, इतना तूफान चल गया, और इतनी धूल, बिल्कुल धूली की बारिश बरसने लगी, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब लोग कोलाहल होने लगा, और बस उसी बीच में, क्योंकि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यशोदा बचाना चाहती थी कृष्ण, परंतु उसी बीच उन्होंने कृष्ण को उठा लिया, और उठा करके आकाश के मार्ग पर चले गए। और जब थोड़ी सी धूली उड़ना कम हुई तो यशोदा ने देखा कहाँ है कृष्ण, तो कृष्ण तो वहां नहीं है। और जब कृष्ण नहीं है तो वो रो पड़े, और अन्य गोपियां भी आ गई, क्योंकि अन्य गोपियां और अन्य गोप भी आ गए कि कृष्ण, सबको कृष्ण की चिंता है, और आ गए कि कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, हमारे काना को कोई तकलीफ तो नहीं है। व्रजवासियों की यही तो भक्ति है, ठाकुर जी का ख्याल रखते हैं, यद्यपि यही सारे विश्व का ख्याल रखते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि कोई हमारा भी ख्याल रखे, और उसी से वो प्रसन्न होते हैं। हम सब तो हमारे ख्याल के लिए ठाकुर जी के पास आते हैं, परंतु ठाकुर जी चाहते हैं कि कोई हमारी ऐसी भक्ति करे कि वो हमारा ख्याल। और यद्यपि भगवान तो समर्थ है और आगे चलकर त्रिणावर्त को मार भी देंगे, परंतु गोपिया और यशोदा ये चाहती है कि हम कृष्ण की रक्षा करें। क्यों ऐसा क्यों चाहती है? आगे भी इसके आगे के प्रसंग में जब सप्तासुर को मार दिया गया तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर या यशोदा ने पंचगव्य से गाय के पूंछ से अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत बहुत उन्होंने विधान किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को गोए दान में दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया कृष्ण के लिए, कृष्ण के अभ्युदय के लिए। तो यही तो भक्ति का यही भाव है कि ठाकुर जी के लिए हमें कुछ करें। नंद बाबा अपने कृष्ण को पुत्र मानते थे, इसलिए उनके अभ्युदय के लिए ब्राह्मणों को दान दिया और कहा कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए। यद्यपि स्वयं भगवान है, सब लोग उसी के पास मांगते रहते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग उसके पास मांगते हैं। इस संसार के लोग तो जाने दो बात, बड़े बड़े देवता भी उनके पास मांगते हैं, देवों के देव सब शिव जी ब्रह्मा इत्यादि सब उनके पास मांगते हैं, परंतु यहाँ पर उनके लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया जाता है। तो इन लीलाओं पर बहुत विचार विमर्श है। एक तो मनुष्य जाति के लिए ये शिक्षा भी है कि हर एक माता पिता को अपने बालकों के लिए, अपने संतान के लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी उनका अभ्युदय ठीक हो सकता है, अन्यथा कितने भी प्रयास से नहीं हो सकता। एक बात नहीं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नंद बाबा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है और मैं उनका ख्याल करूंगा, मैं उनका लालन पालन करूंगा। और ठाकुर जी को यही पसंद है कि प्रत्येक जीव मेरे साथ कुछ न कुछ संबंध स्थापित करे, कोई मुझे अपना पुत्र बनावे, कोई मुझे अपना प्रियतम बनावे, कोई मुझे अपना मित्र बनावे, इसी से वो परम तुष्ट होते हैं। तो हमें भी ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई संबंध निश्चित करना चाहिए और तब जाकर के सेवा पूजा यदि करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव है। तो यहाँ पर ठाकुर जी के लिए ख्याल वात्सल्य भाव में नंद बाबा रक्षा कर रहे हैं। तो गोपिया भी और यशोदा भी दौड़े दौड़े सब गोपी आई कि कृष्ण को कुछ तो नहीं हुआ जब बवंडर आया तो, परंतु देखा कि कृष्ण ही है। इसके आगे के श्लोक में कहते हैं रुदितम अनुनिश्चम्य तत्र गोपिया, गोपिया और यशोदा रोने लगे जोर जोर से कृष्ण के विरह में, कृष्ण नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यही है भक्तों का भाव कि उनके पास जब कृष्ण होते हैं तो वो सुखी होते हैं और कृष्ण जब दूर चले जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार रोने लगी और तब यहाँ पर इस तरफ जो ठाकुर जी को लेकर गया था वो बवंडर के रूप में वक्त्रासुर, तो भगवान ने अपने यद्यपि इस त्रिणावर्त योग सिद्धि को प्राप्त किया था, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कई प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा लदीमा इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकता है, कोई बड़ा बन सकता है, कोई पानी पर चल सकता है, परंतु भक्तों के लिए इस ऐसी सिद्धियों से कोई मतलब नहीं। वो तो बस ठाकुर जी को चाहते हैं, है ना। वत्रासुर जी ने कहा नयोग सिद्धि पुनर्भवं बा समच्च सत्वां विरहे या कांश है, प्रभु मुझे नयोग सिद्धि, योग सिद्धि मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा इस योग सिद्धियों से लोक मान्यता मिलती है परंतु भगवत मान्यता नहीं मिलती। संसार की योग सिद्धियों को प्राप्त करके आप लोक मान्यता तो बहुत मिलेगी, बहुत लोग आपके पास आएंगे और आपके पांव पड़ेंगे आपकी वाह वाह करेंगे, ये सब होता है संसार में। तो उपा जी तात्पर्य में अंत में लिख रहे हैं कि कई ऐसे बाबा जी हैं जो योग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और अपने आप को भगवान मानते हैं, और मूर्ख जनता उसको मान लेती है, उसकी पूजा करती है, उसको मान लेती है। परंतु एक भक्तों के लिए ऐसी मान्यता से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों के चरण में वो लोग चले जाते हैं। रूपा जी लिखते हैं जिन्होंने भागवत को नहीं सुना, इसलिए हमें अपनी भक्ति को बचाने के लिए कहीं हम गलत रास्ते पर न चले जाए भागवत को नित्य सुनते रहना चाहिए वैष्णव के मुख से, नहीं तो कभी भी हमारी बुद्धि फिसल सकती है किसी ऐसे योग स्थितियां। तो त्रिनावर्त योगी योग सिद्धि का उपयोग करके आकाश में उड़ रहा था, परंतु वो नहीं जानता था कि ये कृष्ण तो महायोगी है। योगियों के भी योगी है, इसलिए उनका नाम है योगेश्वर। और जहां पर योगेश्वर है वहां पर बोला क्या कुछ हो सकता है, भगवान बहुत बड़े योगी हैं। महाभारत में भगवान ने इस योग का बहुत उपयोग किया है ना, बिना कुछ किए ही पूरे महाभारत का युद्ध करवाया और अर्जुन के हाथों सभी लोगों को मरवा दिया। इसमें बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भगवान ने बाहर से तो कुछ नहीं किया, परंतु योगी है वो सब कुछ करने में समर्थ। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने 33 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला कैसे, क्योंकि वो योगी है और योगेश्वर है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त करने वाला भी बहुत कुछ कर देता है, तो ये तो भगवान है और योगी सर्वसमर्थ है। तो वो त्रिनावर्त नहीं जानता था, और नहीं जानने के कारण वो कृष्ण को उठा करके ले गया था, परंतु भगवान ने जब अपनी योग शक्ति का उपयोग किया थोड़ा और अपने वजन को बढ़ाया और साथ ही साथ उस वत्रासुर के गले को पकड़ लिया ताकि वो छोड़ न पाए, और अपने वजन को इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया है। यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं ना शक्नोत भूरि भार भूत, वो जो त्रिनावर्त है वो आगे नहीं जा पाया। नभो गतो, पहले तो वो कृष्ण को लेकर, कृष्णम नभो गतो, कृष्ण को लेकर आकाश में चला गया, परंतु ना शक्नोत भूरि भार भूत, भगवान ने जब अपना भार बढ़ाया तो ना शक्नोत, फिर वहां से वो आगे नहीं जा पाया। और शांत रहो त्रिनावर्त, शांत रहो, उनकी गति जो है रुक गई और वो शांत हो गया, और फिर भगवान के भार से वो अपनी शक्ति को जब कम हो गई तो धड़ाम करके पृथ्वी पर गिरा और उनके प्राण निकल गए। परंतु उस सब के प्राण आधार ऐसे कन्हैया तो बस खेल ही रहे हैं, और गोपियों दौड़ करके उनको अपने आंचल में उठा लिया और यशोदा उनको चुंबन करने लगी, उनको देख करके फिर से प्रसन्न हो गए। तो वास्तव में त्रिनावर्त जो है अहंकार का प्रतीक है। जब अहंकार आता है तो व्यक्ति ऊंचाई पर उठने का प्रयास करता है, और परंतु भगवान देखिए भक्ति मार्ग कितना सुंदर है कि वहां पर यदि भक्त को अहंकार आता है, है तो भगवान भी कभी कभी उनके अहंकार को तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अहंकार बहुत चीजों का आ सकता है। धन का अहंकार आता है, अभिमान आता है, रूप का आता है, और हम थोड़ी भक्ति करने लगते तब भी अहंकार आता है, और उसमें भी थोड़ा ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का अहंकार तो बहुत खतरनाक है, ज्ञान का अहंकार। इसलिए शुद्ध भक्ति जो है उसमें ऐसे ज्ञान को नहीं माना गया है। तो इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसा अहंकार आ ना जाए। इसलिए बार बार ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप कृपा बनाए रखना ताकि अहंकार ना आ जाए। और पहले से प्रार्थना करके रखना चाहिए कि यदि अहंकार आ जाए तो आप नष्ट कर देना, और ठाकुर भी कर देते हैं, है ना। जैसे नारद मुनि को एक बार अभिमान आया था, सब जानते हैं रामायण का प्रसंग है, भगवान के अवतार के कारणों में कारण बताया गया है कि नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने क्या क्या किया, और उस अहंकार को तोड़ने में नारद जी ने श्राप भी दे दिया भगवान। आप सब लीला से परिचित हैं, तब भी भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि भक्ति की ये महिमा है। अन्य जो है ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, उसमें पतन भी है और भगवान जल्दी से आते भी नहीं रक्षा करने के, परंतु भक्ति मार्ग इतना सरल है कि जब जीव भक्ति को प्रारंभ करता है तो फिर उनको पूरा करने की गारंटी भगवान लेते हैं, वो कराते हैं इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में। परंतु जिनकी भक्ति जितनी तीव्र है उतना ही वो जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यह भक्ति मार्ग जहां पर भगवान अपने भक्तों के अहंकार को भी तोड़ते हैं। गोपी गीत में भी एक श्लोक में इस बात पर गोपियां कहती हैं कि आपके रूप या तो आपकी लीलाओं से कभी कभी आप हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। तो ये अहंकार का प्रतीक है यहाँ तृणावत, और भगवान ने उनको मार दिया, और हमें भी भगवान का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए ताकि हमारे हृदय में जो बहुत सारे असुर हैं भगवान को कहना चाहिए कि उनको मार करिए। और वास्तव में भगवान की कथा ही एक ऐसा आश्रय है, भगवान की गुण रूप की कथा, उनका नाम यदि इसी के संपर्क में रहेंगे तो साक्षात भगवान ही है वो, हमारे अंदर दूसरे असुर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य, मद, लोभ, ये सब जो है ये भी असुर है, और भगवान के आने से या भगवान के संपर्क में रहेंगे, हरि कथा और हरि नाम के संपर्क में रहेंगे तो ऐसे असुर आएंगे नहीं, भाग जाएंगे, मार देंगे ठाकुर जी। यहीं पर भगवान को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भागवतम महापुराण की श्री गोपाल की गोर हरिप्रिया।